أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرتين سورة آل عمران آية نمبر 103
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ
اچھا اب ہم 102 آیت لیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں سے کہ ڈرو اللہ سے اب یہ ڈر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈر کیسا ڈر ہے اس ڈر کو ہم کیا سمجھیں کس طریقے سے اس ڈر کو ہم سمجھیں جانیں پہچانیں کیوں اگر دیکھا جائے تو ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے اگر ڈرتے تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے قرآن و سنت کو لیتے لیکن ہمیں ڈر نہیں ہم نہیں ڈرتے تو اب اس میں ہمیں ہر ایک کو ہمیں دیکھنا ہوگا اپنے آپ کو کہ کیا میں اللہ سے ڈر رہی ہوں میرے دل میں اللہ کا خوف ہے کیا میں اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہی ہوں اور پھر اگر ڈر رہی ہوں تو کیسے ڈر رہی ہوں صرف زبانی ڈر رہی ہوں کہ نہیں میں عمل کے لحاظ سے کہ میں اس کی رضا کے مطابق کام کر رہی ہوں تو مجھے اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے اگر نہیں لوں گی تو پھر میرے لیے دوزخ تیار ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس کو اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اس کو سمجھیں گے جو زیادہ نہ سمجھ سکے کہ ایسے دیکھیں ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں اپنے پولیس والوں سے ڈرتے ہیں فوج سے ڈرتے ہیں اب جتنے مالدار لوگ ہیں ان سے ڈرتے ہیں ہم بدماشوں سے ڈرتے ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اب ان لوگوں سے ڈرنا اور اللہ سے نہ ڈرنا یہی وجہ ہے کہ جس دن میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اس دن یہ دنیا والوں کا ڈر غائب ہو جائے گا کیوں کہ میں صراط مستقیم پہ جب میں چلوں گی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی تو میرے دل سے یہ تمام خوف نکل جائیں گے دنیا والوں کے صرف ایک اللہ کی ناراضگی کا خوف آ جائے گا اور پھر مجھ میں وہ ایمانی قوت آئے گی وہ طاقت آئے گی کہ کوئی مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کس طریقے سے اس دنیا کو اور دین کو لے کے چلیں وہ یہ طریقہ ہے कि आपको दुनिया वालों से को से हर किस्म का डर ख़त्म करना होगा, और वो डर जब ही ख़त्म हो सकता है जब हम अल्लाह की नाराज़गी का डर अपने दिल में बिठा लें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपने ज़िंदगी को संवारें, उसके मुताबिक अमल करें। तो अब अल्लाह ताला मुझे कहता है कि देखो मुझसे डरो जैसा मेरा हक है। अब अल्लाह का हक सबसे ज़्यादा है, तो हक्का तुकात ही, जिस तरीके से मुझसे डरने का हक है उस तरह तरीके से उस तरह डरो। वला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून, लेकिन मत मरना लेकिन मुसलमान। अब इसका जवाब आगे अल्लाह ताला कह रहा है, अब अल्लाह ताला मुझे कह रहा है कि तुम मत मरना मगर मुसलमान। अब मुसलमान वो है जो अल्लाह के कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी मर्ज़ी छोड़ दी, वो सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी, अल्लाह को अपना नज़्बुलैन बना के और अल्लाह और रसूल की हुक्म के मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुताबिक सुबह से शाम तक, पैदाइश से मौत तक वो हर काम अपनी ज़िंदगी का वो उसी तरह कर रहा है, वो है मुसलमान। अब अल्लाह ताला मुझे बता रहा है कि देखो तुम इस मुसलमाने पे कैसे कायम रह सकते हो, ये मुसलमानी है क्या, क्या है। अब आगे आयत में अल्लाह ताला कहता है वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीउन वला तफर्रकु। अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रस्सी को, अब अल्लाह की रस्सी क्या है, कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हदीसें, ये अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह कह रहा है इसको मजबूती से पकड़ लो, जमीउन वला तफर, सब अल्लाह कह रहे एक चीज नहीं, पूरी तरह तुम्हें पकड़ना होगा, यानी हर शोबे जिंदगी में आपको अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक और सबको मिलके करना होगा। अपने में फिरका बंदी मत डालो। अब ये फिरका बंदी हम लोगों में कितनी है ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन इस ग्रुप में जो लोग हैं हमें निकलना होगा उससे, हमें किसी से किसी फिरके से कोई मतलब नहीं है, ना हम सुन्नी को जानते हैं, ना हम देवबंदी को जानते हैं, ना बरेली को जानते हैं, ना जमात कौन सा वाला जमात इस्लामी को जानते हैं, ना अच्छा और ना हम शिया को जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह और रसूल को जानते हैं। ये अगर जब तक ये नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में ना, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगी। मुझे इन तमाम फ़िरक़ों से, इन तमाम सोचों से, इन तमाम मुख्तलिफ फ़िरक़ों के तरीक़ेकार से मुझे अपने को निकालना होगा और मुझे अल्लाह की रस्सी पकड़नी है। अल्लाह की रस्सी कुरान है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बस, और सब मिलके पकड़ेंगे, एक जमात की शक्ल में आएंगे। क्यों जमात की शक्ल में आएंगे, इसलिए कि कुरान को के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मेरा मकसद है और इसको अल्लाह के इस पैगाम, कुरान अल्लाह का पैगाम है, इस पैगाम को जमात की शक्ल में फैलाना होगा। इनफरादी तौर पे ज़्यादा नहीं फैल सकता जब तक एक जमात की शक्ल लो। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में कोशिश करते रहे, लेकिन ज़्यादा इस्लाम ने कामयाबी कहाँ हासिल की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मदीने में जब जमात हो गई। तो अब हमारे ये जमात है, अब हम लोगों को चाहिए कि हम अपने को तैयार करें। हम जब अपने को तैयार करेंगे अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में, अल्लाह का हुक्म मानने में, तो फिर हम अपने घर पे काम करेंगे, अपने बच्चों पे काम करेंगे, अपने शौहर पे काम करेंगे, अपने माँ बाप पे काम करेंगे, हम अपने आस पड़ोस, अपने दोस्त अहबाब, मिलने जुलने सब पे काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला मुझसे कह रहा है कि सब शामिल हो जाओ, एक जमात बना लो। तो अब हमें इस जमात को कामयाब करना है, उसका तरीका यही है कि सबसे पहले अपने ऊपर कुरान और सुन्नत को लागू करें, उसके जाहिर और बातिन के मानों को समझें, अल्लाह की मर्जी को समझें, अल्लाह के पहचान हो, अल्लाह से कनेक्शन हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह से इश्क हो, और अल्लाह के अलावा, अल्लाह और रसूल के सामने किसी को नहीं लाएं। किसी को कोई अहमियत नहीं दें, किसी की न रिश्तों को अहमियत दें, न अपनी जात को अहमियत दें, न दुनिया वालों को अहमियत दें, न रिश्तेदारों को अहमियत, किसी चीज को न अपने बिजनेस को अहमियत दें, न अपनी इज्जत को अहमियत दें, न अपनी बेइज्जती को अहमियत दें, किसी चीज को दें। जब हम इस चीज से अल्लाह और रसूल के ये रास्ते पे चल जाते हैं ना, तो फिर हमें परवाह नहीं होती कि कौन हमारी इज्जत कर रहा है और कौन हमारी हमें बेइज्जत कर रहा है, कौन हमें गालियां दे रहा है और कौन हमारी तारीफ कर रहा है। क्यों? कि हमने हमें ये इन तमाम चीजों से हम निकल गए और हमें निकल जाना चाहिए, हमें यकसू हो जाना चाहिए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसे रसूल पाक सल्लम यकसू थे और सिर्फ अल्लाह ही को देखते रहते थे, अल्लाह ही की मर्जी करते थे। तो मुझे अपने अल्लाह ही को देखना है और जाहिर अपने अल्लाह को देखने के लिए मेरे सामने इस वक्त अपना शेख, अपना उस्ताद है, उसको जानना होगा, उसको पहचानना होगा, उसके मिजाज को समझना होगा, उसके मुताबिक करना, और टोटली मुझे अपने वो पुराने रिश्तों से और पुराने फिरकों से और पुराने उससे निकलना होगा, सबको भूलना होगा, बिल्कुल साफ करना होगा। जैसे हमारी एक साथी ने कहा कि यू टर्न लेना है, तो सही, सबको हमें यू टर्न लेना होगा मजबूती से, यकीन के साथ। फिर अल्लाह ताला कहता है वस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम इस कुंतुम, अल्लाह कह रहा है कि याद करो वो नेमत, नेमत कौन सी, आदा अनफा फअल्फा बैन कुलूबहिम फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, अल्लाह कहता है याद करो उस वक्त को जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर मैंने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली और तुम भाई भाई हो गए। अब ये किस तरफ इशारा है, ये जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो दो कबीले थे, औस और खराज, दोनों में हजारों साल से दुश्मनी चल रही थी। जब हुजूर आए तो उन वो लोग, उनमें से लोग मुसलमान हुए तो वो सारे दोनों कबीले मुसलमान हो गए और भाई भाई हो गए। इसी तरह नसारा और महाजिर भाई भाई हो गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही ये किया। तो अब अल्लाह कह रहा है कि कितनी सालों की, 120 साल तक उनकी दुश्मनियां जलती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, जब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया, उनके बैत की और कबूल किया और उनके कहने पे चले, उनको अपना लिया, तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी बहुत बड़ी नेमत है, ये भी समझे। ये क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस वक्त के लिए थे, या सिर्फ सहाबा के लिए थे, या सिर्फ अंसार महाजिर के लिए थे? नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे लिए भी हैं। आप हयात हैं, आप मुझे देख रहे हैं और आप क्यामत तक हैं, अब तो कोई दूसरा नहीं आएगा। तो अब मुझे अब देखना है कि मैं, मेरे दिल में किसकी मोहब्बत है, ये है असल, कि मेरे दिल में किसकी मोहब्बत है। मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ है, कोई गुस्सा है, कोई कीना है, कोई नफरतें हैं, और तो ये सब मुझे निकालनी होंगी। क्यों? कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में तो मुझे नेमत मिली है, कुरान की शक्ल में मुझे नेमत मिली है, तो अब मुझे अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल के अपने को बदलना होगा। तो फिर यकीन करें आप लोग, जब मैं हम अल्लाह और रसूल का रास्ता ले लेते हैं ना, तो ये सारी रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं, ये शिकायत ख़त्म हो जाती है, ये बोगस, ये लड़ाई, ये ख़त्म हो जाती है, ये एक दूसरे की ज़रा ज़रा सी बातों पे को माइंड करना, खफा होना, सब ख़त्म हो जाता है। क्या आ जाती है? सब्र आ जाता है, माफ़ी की क्वालिटी आ जाती है, दरगुजर आ जाती है। अल्लाह पे, क्यों? अल्लाह पे नज़र है, हम जो कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम मखलूक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये याद रखें। हर इंसान जो, जिसने अल्लाह और रसूल को अपनाया, उसका रास्ता लिया, उसको फ़ायदा है, हम दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। फ़ायदा पहुंचाने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, मेरी ज़ात नहीं है। मैं जो कर रही हूँ अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक, जो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे अपने को फ़ायदा पहुँचा रही हूँ। मैं अगर किसी के साथ एहसान कर रही हूँ, किसी की खिदमत कर रही हूँ, किसी को कोई लेन देन कर रही हूँ, या किसी की गरीब का ख्याल कर रही हूँ, मोहताज का ख्याल कर रही हूँ, माँ बाप की खिदमत कर रही हूँ, शोहर की खिदमत कर रही हूँ, बच्चों की खिदमत कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं अपने को फ़ायदा पहुँचा रही हूँ। मैं उन लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही। ये याद रखें, ये एक ऐसा नुक्ता है, अगर इसको आप लोगों ने समझ लिया ना, ये तमाम शिकायतें लोगों से ख़त्म हो जाएंगी। हमारी ये जो शिकायतें हैं ना कि हम नेकी करते हैं लोग हमारे साथ बदी करते हैं, हम अच्छा करते हैं लोग हमारे साथ बुराई करते हैं, हम अच्छी तरह चल रहे हैं लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारी शिकायतें क्यों होती हैं? इसलिए कि ये हम एक उनसे उम्मीद के तौर पे करते हैं कि इनसे हमें कुछ मिलेगा, और ये जो उम्मीद है ये है शिर्क। ये उम्मीद जो है ये शिर्क है। इस मुझे अल्लाह की जात, मैं जो करूं अल्लाह के लिए करूं, ना मैं शौहर के लिए, ना माँ बाप के लिए, ना बहन भाइयों के लिए, ना बच्चों के लिए, किसी के लिए। जो मैं नेकी कर रही हूं, जो मैं खिदमत कर रही हूं, जो मैं अच्छाई कर रही हूं, जो मेरी जात से अल्लाह ताला किसी को फायदा पहुंचा रहा है, अल्लाह ने तौफीक दी है ना। अगर अल्लाह तौफीक ना दे तो मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, अल्लाह तौफीक जो अल्लाह की तरफ से मिल रही है। अच्छा, जो वो उसकी तरफ से तौफीक मिल रही है और मैं कर रही हूँ, तो ये अल्लाह ही के लिए कर रही हूँ मैं, तो मुझे अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया, तूने मुझे इस काबिल समझा, तूने मुझे इस चीज़ की तौफीक दी। अच्छा, जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी, हमारी सोचें नहीं बदल जाएंगी, हम में इत्मीनान और सुकून नहीं आ जाएगा, हमें सब्र नहीं आ जाएगा बहुत। तो अल्लाह ताला, तो अब ये अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी से कोई खफगी ना रहे, कोई दुश्मनी ना रहे, किसी से कोई गम नहीं रहे, तो अब मुझे ये करना होगा। तो अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ये नेमत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नेमत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत है, तो ये जब इस पे हम सही तरीके से सही मानों में जैसे अल्लाह चाहता है अब मुझसे कि मैं कुरान को लूँ, अल्लाह से डरूँ, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, तो ये कुरान एक मुझे अल्लाह ताला ने एक अमली तौर पे पेश कर दिया कि देखो इसको समझो, इसको जानो, इसको पहचानो, और इसके पे अमल करते हुए तुम मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला कहता है वकुंतुम अला शिफा हुफ्रतिम मिनन नार फअक्ज़ाकुम मिनहा। अल्लाह कहता है तुम दोज़ख के किनारे पर थे, दोज़ख के किनारे पर थे तुम, लेकिन उसने तुम्हें बचा लिया। अब दोज़ख का किनारा, इस वक्त देखें हम सब दोज़ख के किनारे पे हैं। अगर हम अल्लाह और रसूल की मुखालफत में ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारेंगे, कुरान के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हम दोज़ख के किनारे पर हैं। तो मुझे ये चीज़ को समझना है, ये दोज़ख का किनारा क्यों, कि ये जो अमल है ये आखरत के लिए है। जो भी मैं अमल कर रही हूँ उसका नतीजा मुझे आखरत में मिलेगा। तो अगर अच्छा कर रही हूँ तो अल्लाह ताला मुझे अपना क़ुर्ब अता करेगा, अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रही हूँ तो मैं दोज़ख में जाऊँगी, सीधे दोज़ख में जाऊँगी। तो उस दोज़ख से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि मैं अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ लूँ, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लूँ, अल्लाह को मकसद ज़िंदगी बना लूँ, फोकस अल्लाह पे करूँ, फोकस रसूल पास पे करूँ, फोकस अपने मुर्शिद पे करूँ, तो मैं इन तमाम चीज़ों से बढ़ जाऊँगी। अल्लाह ताला कहता है कज़ाले का युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह कहता है मैंने खोल खोल के आयतें बता दी, अब अल्लाह ताला सब खोल खोल के बता दें ताकि तुम हिदायत पाओ। अब ये हिदायत ऐसे है, हम कहते हैं नहीं अल्लाह जब चाहेगा तो हमें हिदायत मिलेगी, नहीं अल्लाह तो चाह रहा है, अल्लाह ताला ने तो मुझे कुरान दे दिया, अल्लाह ताला ने तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिए, मुझे अल्लाह ताला ने अकल दे दी, समझ दे दी, मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया दे दी, सब कुछ दे दिया, किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो नहीं वाजे की कुरान में मेरी, क्योंकि ये कुरान जो है मेरी ज़िंदगी गुजारने का एक लाए अमल है, ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारनी है, अपनी मर्ज़ी नहीं, कहीं भी अपनी मर्ज़ी नहीं, कहीं भी अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी वहाँ मैं अल्लाह, मैं एक तरीके से मैं अल्लाह से दूर हो जाऊँगी। अब इस अगर बज़ाहिर देखा जाए तो हम अल्लाह से दूर हैं, तो मुझे वापस अल्लाह की तरफ आना है, हर एक को इनफरादी तौर पे अल्लाह के पास करीब आना है, अल्लाह को लेना है, अल्लाह से जुड़ना है। तो उसको जुड़ने के लिए आपको वक्त के इमाम को पहचानना होगा, آپ سب سے میں کہہ رہی ہوں, آپ لوگ سب وقت کے امام کو پہچانیں, اس سے جڑ جائیں, اور اس کو ایک تو پہلے نیت کریں مقصد زندگی کا, کہ اللہ میرا مقصد زندگی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہنما ہیں دنیا آخرت دونوں کے, تو اب جو وقت کا امام ہے وہ مجھے اللہ رسول تک پہنچانے والا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ سمجھنے کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں, اور یہی لوگ مراد کو پہنچے.
اچھا, اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ول تکم مین کم امتوں ید اون الخیر و یا مرون بالمعروف ین ہو المنکر. اللہ کہتا ہے تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے ہمیشہ, اور یہ قیامت تک رہے گا, ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اللہ کی نیکیوں کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اب ہم اس گروپ پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ہدایت کے ساتھ مجھے چن لیا ہے آگے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے, تو آپ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے اپنے پہ, پہلے اپنے کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو آپ وہ جماعت ہوں گی, آپ وہ گروہ ہوں گی جو اللہ کے پیغام کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو آگے پھیلائیں گی, اور لوگوں کو آپ میں اتنی طاقت ہوگی, اتنی صلاحیت ہوگی, اتنی خود اعتمادی ہوگی, اتنا حوصلہ ہوگا, کسی کوئی ڈر نہیں کہ آپ اللہ کے راستے پہ لوگ کو بلائیں اور جو اللہ کے خلاف چل رہا ہے اس کو روکے, اس کو روکے. تو وہ اولئک ہم المفلحون, اللہ کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر بتا دیا, ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں, تو اللہ تعالیٰ نے قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا. یہی لوگ کامیاب مراد کو پہنچیں گے, مراد کو پہنچنا اپنے مقصد کو پہنچیں گے. اب ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب مجھے اپنے کو تیار کرنا چاہیے کہ میں وہ مقصد زندگی حاصل ہوں. میری زندگی کا مقصد اللہ ہے, اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس کے لیے پیدا کیا ہے, نہ کہ مجھے دوزخ کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, محبت کرنے والا ہے, تو اس نے مجھے اس دوزخ سے بچانے کے لیے اس نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور قرآن دیا. عملی طور پر اب مجھے قرآن کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہوگا اپنے ایک وقت کے امام کی صحبت میں رہ کر, تاکہ میری زندگی کا جو مقصد ہے یعنی اللہ, اللہ کا دیدار, وہ مجھے مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.